तो 2025 में निवेश के जरिए एक अच्छी वेल्थ बनाने की सोच रहे हैं। चलिए आज हम ऐसे 6 म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं जो इस सफर में आपके साथी बन सकते हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करना आखिर काम कैसे करता है।
ये सवाल अक्सर हम सबके मन में आता है ना कि क्या सिर्फ 500 रुपए जैसी छोटी रकम से भी वेल्थ बन सकती है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कैसे हर महीने का एक छोटा सा निवेश भी समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम में बदल सकता है। और इसका जवाब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। देखिए, राज बड़ी रकम में नहीं बल्कि लगातार निवेश करने में है, और SIP इसी चीज को बहुत आसान बना देता है जिससे कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं उन निवेशकों से जो ज्यादा उठापटक पसंद नहीं करते, मतलब जो अपने निवेश में स्थिरता चाहते हैं। देखते हैं उनके लिए कौन से फंड सही हो सकते हैं। तो ये रास्ता उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव से दूर रहकर धीरे धीरे और आराम से अपनी दौलत को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हमारे लिस्ट में पहला नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लार्ज कैप फंड है। अब एक मजेदार बात बताता हूँ, इसका बीटा 0.89 है। बीटा से हमें ये पता चलता है कि कोई फंड मार्केट के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है। अब क्योंकि इसका बीटा 1 से कम है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये फंड मार्केट के मुकाबले कम वॉलेटाइल है, जो इसे एक स्टेबल ऑप्शन बनाता है।
अगला है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप का मतलब ही है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फंड मैनेजर के पास पूरी आजादी होती है कि वो मार्केट को देखकर अपना पैसा बड़ी, मीडियम या छोटी किसी भी तरह के कंपनियों में लगा सकता है। इसका बीटा भी 0.88 है, मतलब ये भी स्थिरता के साथ ग्रोथ देने वाला एक बेहतरीन विकल्प है।
ओके, तो अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो स्टेबिलिटी तो चाहते हैं लेकिन साथ ही बेहतर ग्रोथ के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने से भी नहीं कतराते।
तो ये कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो समझते हैं कि थोड़ा रिस्क लेने से रिटर्न भी बेहतर मिल सकता है और वो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं।
बंधन कोर इक्विटी फंड इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें आपको लार्ज कैप वाली स्टेबिलिटी भी मिलती है और मिड कैप वाला ग्रोथ का तड़का भी, मतलब एक बढ़िया बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये एक सॉलिड चॉइस है।
और अब जरा इस पर नजर डालिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका 5 साल का CAGR 32% से भी ज्यादा है, मतलब इसने पिछले 5 साल में औसतन हर साल 32% का रिटर्न दिया है। और इसका अल्फा देखिए करीब 6%। अल्फा का मतलब है कि इसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले 6% ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, जो कि जबरदस्त है।
चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले फंड्स, और साथ ही एक ऐसा फंड भी देखेंगे जो न सिर्फ पैसा बढ़ाता है बल्कि आपका टैक्स भी बचाता है। सीधी बात है, ये फंड्स उनके लिए है जिनका जिगरा बड़ा है, जो लंबे समय तक पैसा लगाकर रख सकते हैं और मार्केट के बड़े बड़े झटकों को भी आसानी से झेल सकते हैं।
बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड एक अग्रेसिव ऑप्शन है। देखिए, इसकी अस्थिरता को नापने के लिए एक चीज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो यहाँ 22 से ज्यादा है। इसका साफ मतलब है कि इसके रिटर्न्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और यही तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की पहचान है। जहाँ रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा होती है।
ये एक खास तरह का फंड है जिसे ELSS कहते हैं। इसमें आपको अच्छी ग्रोथ तो मिलती ही है, साथ ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने का डबल फायदा भी मिलता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। और आखिर में ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए, चाहे आप कोई भी फंड चुने, जरूरी ये नहीं कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं। जरूरी ये है कि आप छोटी शुरुआत करें, लगातार करते रहें और फिर बस कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दें। तो ठीक है, हमने 6 फंड्स तो देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इनमें से अपने लिए कौन सा चुने। चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। देखिए, ये बहुत आसान है, बस खुद से पूछिए कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपको स्टेबल और लगातार ग्रोथ चाहिए तो स्टेप 1 आपके लिए है। अगर आप थोड़ा रिस्क और थोड़ा रिटर्न का बैलेंस चाहते हैं तो स्टेप 2 देखिए। और अगर आप हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेने को तैयार है तो स्टेप 3 और 4 आपके लिए है। तो रास्ते आपके सामने हैं, एक स्टेबल सफर का, एक बैलेंस्ड वाला या फिर एक तेज रफ्तार वाला। अब फैसला आपको करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी किस रास्ते पर जाएगी। सोचिए आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है और आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं।